एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम जिस किताब की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं, उसने सचमुच में दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदला है। कार्ल सेगन की पेल ब्लू डॉट, ए विजन ऑफ द ह्यूमन फ्यूचर इन स्पेस।
नाम ही कितना मतलब काव्यात्मक है ना।
बिल्कुल,
धुंधला नीला बिंदु।
बिल्कुल, और ये नाम आया है उस बेहद मशहूर तस्वीर से वॉयेजर 1 अंतरिक्षयान ने ली थी, अरबों किलोमीटर दूर से हमारी अपनी पृथ्वी की।
सोचिए जरा, इतनी दूर से हमारा घर, बस एक छोटा सा धुंधला सा नीला नुक्ता, और यही तस्वीर इस किताब के केंद्र में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इतने साल गुजर जाने के बाद ये किताब क्यों जरूरी है?
मुझे तो लगता है कि आज ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जिस तरह दुनिया बटी हुई है, पर्यावरण की जो चिंताएं हैं, ऐसे माहौल में सेगन का जो कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है, मतलब ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण,
हाँ,
वो हमें एक अलग नजरिए से, एक ऊंचाई से चीजों को देखने में मदद करता है। ये याद दिलाता है कि भाई, इस विशाल ब्रह्मांड में हम सब कितने छोटे हैं और कितने जुड़े हुए हैं।
सही कहा, ये सिर्फ तारों और ग्रहों की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है, हमारे भविष्य की।
बिल्कुल, तो चलिए इसी दृष्टिकोण के जो जनक हैं कार्ल सेगन, उनके बारे में थोड़ी बात हो जाए। वो सिर्फ एक खगोलशास्त्री नहीं थे, जैसा आपने कहा।
हाँ बिल्कुल नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे।
कार्ल सेगन 1934-1996, जाहिर है खगोलशास्त्री, ग्रह विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, ये सब तो थे ही, पर उनकी असली पहचान बनी 20वीं सदी के शायद सबसे प्रभावशाली विज्ञान संचारक के तौर पर।
हाँ, वो लोगों तक विज्ञान पहुंचाते थे।
बिल्कुल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, शुक्र ग्रह का वो जो भयानक तापमान है उस पर काम किया, ग्रहों के वायुमंडल पर और सिटी पर भी, मतलब बाहर जीवन की खोज।
और उनकी किताबें और टीवी शोज, द ड्रैगन्स ऑफ ईडन जिसे पुलित्ज़र मिला, कॉस्मोस टीवी सीरीज, कौन भूल सकता है।
हाँ, उसने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, और कॉन्टैक्ट फिल्म भी उनकी किताब पर ही बनी थी। लेकिन एक और खास बात थी, वो सिर्फ थ्योरी में नहीं थे।
आप उनके स्पेस मिशन से जुड़ाव की बात कर रहे हैं।
हाँ, मेरीनर, वाइकिंग, पायोनियर, वॉयेजर, इन सब बड़े मिशनों में उनका सीधा हाथ था। वो सिर्फ बाहर से नहीं देख रहे थे, वो उसका हिस्सा थे।
और वो पेल ब्लू डॉट तस्वीर का आइडिया भी तो उन्हीं का था।
अरे हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। 1981 में उन्होंने नासा से कहा, बल्कि जिद की, कि भाई वॉयेजर 1 जब सौर मंडल से बाहर जा रहा हो ना, तो एक बार कैमरा घुमाकर पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली जाए।
और नासा मान गया।
शुरू में नहीं, काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार 1990 में वो तस्वीर ली गई, वही धुंधला नीला बिंदु, और उसी ने इस किताब को प्रेरित किया। यही तो सेगन की खूबी थी, विज्ञान की गहरी मुश्किल बातों को दर्शन और इंसानियत से जोड़कर आम लोगों के लिए इतना आसान और भावनात्मक बना देना।
तो ये किताब पेल ब्लू डॉट असल में है किस बारे में? क्या सिर्फ उस तस्वीर के बारे में?
तस्वीर तो कह सकते हैं एक दरवाजा है। असल में ये किताब कॉस्मोस का ही अगला कदम है, एक तरह का वैज्ञानिक और दार्शनिक मैनिफेस्टो।
मैनिफेस्टो
मतलब
सेगन इसमें मानवता के भविष्य के लिए एक रास्ता सुझा रहे हैं।
उनका मेन तर्क ये है कि अगर हमें इंसानियत को लंबे समय तक अपना वजूद बनाए रखना है, तो हमें सिर्फ इस एक ग्रह पृथ्वी तक ही सिमट कर नहीं रहना होगा, हमें एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा।
मल्टीप्लैनेटरी यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर बसने वाली प्रजाति।
बिल्कुल, और ये किताब हर उस इंसान के लिए है जिसके मन में ब्रह्मांड को लेकर थोड़ी भी जिज्ञासा है, या जो दुनिया के भविष्य के बारे में सोचता है, परवाह करता है।
तो ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा के रोमांच के बारे में नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है।
हाँ बिल्कुल, किताब का मकसद यही है, हमें समय और अंतरिक्ष के इतने बड़े कैनवस पर रखकर हमारे अंदर वो आश्चर्य, विनम्रता और जिम्मेदारी का एहसास जगाना।
शुरुआत उसे पेल ब्लू डॉट तस्वीर से होती है।
हाँ, वो तस्वीर सूरज की किरण में तैरते हुए धूल के कण जैसी हमारी पृथ्वी, वो तस्वीर हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हमारे सारे झगड़े, नफरतें, हमारी खींची हुई सरहदें, सब कुछ इसी छोटे से नीले बिंदु पर तो हैं।
और फिर सेगन हमें इतिहास में ले जाते हैं। वो जिसे कहते हैं महान पदावनतियां या ग्रेट इमोशंस, ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है, पदावनति।
हाँ, सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, पर उनका मतलब अलग है। सेगन ये दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान ने धीरे धीरे हमें, इंसानियत को, ब्रह्मांड के केंद्र से हटाया है।
जैसे पहले हम सोचते थे पृथ्वी केंद्र है।
बिल्कुल, फिर पता चला नहीं, सूर्य केंद्र है। फिर मालूम हुआ कि अरे, हमारा सूर्य भी लाखों करोड़ों तारों में से एक मामूली तारा है, और हमारी आकाशगंगा वो भी अरबों में से बस एक।
तो ये पदावनतियां हैं।
हाँ, और सेगन कहते हैं कि ये हमें छोटा महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी संकीर्ण सोच हमारे अहंकार से हमें आजाद करती हैं। एक तरह की बौद्धिक मुक्ति, और ये विनम्रता ज्ञान हासिल करने के लिए पहली शर्त है।
अच्छा, तो पहले ब्रह्मांड में हमारी जगह, फिर इतिहास, उसके बाद?
उसके बाद वो हमें सौर मंडल की एक वैज्ञानिक सैर पर ले जाते हैं, और आखिर में वो बहुत मजबूती से ये तर्क रखते हैं कि हमें अंतरिक्ष में क्यों जाना चाहिए। हमारी सुरक्षा के लिए, संसाधनों के लिए, और सबसे बढ़कर हमारी जो अंदरूनी खोज की प्यास है ना, उसे बुझाने के लिए।
चलिए, किताब के कुछ हिस्सों पर थोड़ी और बात करते हैं, खासकर वो शुरुआती हिस्सा, पेल ब्लू डॉट तस्वीर वाला। सेगान जिस तरह उसका वर्णन करते हैं, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं रह जाती।
बिल्कुल, वहीं से वो कॉस्मिक पर्सपेक्टिव यानी ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण का आइडिया सामने आता है कि जब आप पृथ्वी को इतनी दूर से देखते हैं तो सारे देशों के झंडे, सारे धर्म, सारे झगड़े सब धुंधले पड़ जाते हैं।
हाँ, बस एक छोटा सा नाजुक सा घर नजर आता है जिस पर हम सब साथ हैं। कितनी सीधी सी बात है, पर हम रोज इसे भूल जाते हैं।
और यही नजरिया हमें उन महान पदावनतियों को सही ढंग से समझने में मदद करता है। जैसा मैंने कहा, ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये सच्चाई की तरफ बढ़ते कदम हैं।
कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब ने हमें ब्रह्मांड में हमारी असली जगह दिखाई।
हाँ, और ये भी कि विज्ञान सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, पूर्वाग्रहों से हटकर सबूतों के आधार पर सोचने का तरीका।
ये बात तो आज भी मतलब बहुत जरूरी है। हम कितनी बार अपनी मान्यताओं से चिपके रहते हैं, सबूत चाहे कुछ भी कहें। सेगन का नजरिया यही था, सत्य के प्रति ईमानदारी।
बिल्कुल, और इसी वैज्ञानिक नजरिए से वो हमें सौर मंडल की सैर कराते हैं। लेकिन ये कोई जैसे टूर गाइड होता है ना, वैसी सैर नहीं है।
हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि मंगल लाल है।
नहीं, वो हर ग्रह को एक कहानी की तरह, एक सबक की तरह पेश करते हैं। शुक्र ग्रह को लीजिए, वो उसे एक नरक जैसा बताते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ग्रीन हाउस प्रभाव पूरी तरह बेकाबू हो गया है।
और ये हमारे लिए एक सीधी चेतावनी है, पृथ्वी के साथ हम जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है।
बिल्कुल, फिर मंगल है जो भविष्य की उम्मीद है। क्या वहां कभी पानी था? क्या वहां जीवन? शायद सूक्ष्म जीवन, हो सकता है। क्या हम इंसान कभी उसे रहने लायक बना पाएंगे, जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं? ये सवाल हमें भविष्य की तरफ धकेलते हैं।
और बाहरी ग्रहों के चांद, वो तो और भी दिलचस्प है। बृहस्पति का यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे शायद एक पूरा समंदर छिपा है।
हाँ, और उस समंदर में जीवन भी हो सकता है। या फिर शनि का चांद टाइटन, उसका घना वायुमंडल जहां जीवन बनने से पहले के रसायन, मतलब प्रीबायोटिक केमिस्ट्री मिल सकती है।
ये सब सुनकर तो लगता है कि जीवन की परिभाषा कितनी बदल सकती है, रहने लायक जगह कैसी हो सकती है, इसकी हमारी कल्पना ही बढ़ जाती है।
सही कहा, तो ये सौर मंडल का टूर सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विविध है, कितना हैरत अंगेज है, और खोज के लिए कितने मौके हैं। और यहीं से सेगन अपने सबसे अहम तर्क पर आते हैं
कि हमें अंतरिक्ष यात्री सभ्यता क्यों बनना चाहिए।
हाँ, ये कोई शौक या विलासिता की बात नहीं है, सेगन के लिए ये एक जरूरत है हमारे लंबे समय तक टिके रहने के लिए।
इसके पीछे कई कारण गिनाते वो, है ना?
पहला तो शायद सबसे जरूरी है, हमारे अस्तित्व की रक्षा।
हाँ,
एस्टेरॉयड और कॉमेट यानी शुद्र ग्रह और धूमकेतु का खतरा। डायनासोर शायद ऐसे ही किसी टक्कर से खत्म हुए थे। अगर हम इंसान सिर्फ एक ही ग्रह पर रहेंगे तो ये ऐसा है जैसे आपने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हों।
मतलब एक बड़ा खतरा आया और सब खत्म।
हाँ, तो एक मजबूत अंतरिक्ष कार्यक्रम, दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाना, ये एक तरह से हमारा बीमा है भविष्य के लिए।
दूसरा कारण थोड़ा आदर्शवादी सा लगता है, एकता।
हाँ, सेगन का मानना है कि दूसरे ग्रहों पर जाना, वहां बस्तियां बसाना, ये इतना बड़ा, इतना मुश्किल और इतना साझा लक्ष्य होगा कि शायद ही हमें पृथ्वी पर आपस में लड़ने झगड़ने से रोक दे।
क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो आक्रामक ऊर्जा है वो बाहर की तरफ मुड़ जाए?
ये एक बड़ा सवाल है, कौन जाने। लेकिन उनका तीसरा कारण मुझे ज्यादा बुनियादी लगता है, हमारी अपनी फितरत,
खोज करने की इच्छा।
हाँ, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, ये हमारे डीएनए में है कह सकते हैं। हम खानाबदोशों के वंशज हैं, हमेशा नई जगहों की तलाश में रहे हैं। अगर हम ये करना बंद कर देंगे तो शायद हम इंसानियत का एक अहम हिस्सा खो देंगे। रुक जाना, एक तरह से पीछे हटना है।
और चौथा कारण?
चौथा है वैज्ञानिक खोज। ब्रह्मांड में जानने को इतना कुछ है, इतने रहस्य हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ ग्रहों तारों को नहीं जानते, हम खुद अपने वजूद को, अपनी उत्पत्ति को बेहतर समझते हैं।
सेगन तो बकायदा एक रोड मैप भी सुझाते हैं, चांद पर बेस बनाने से लेकर मंगल पर कॉलोनी बसाने तक।
हाँ, वो मानते हैं कि ये महंगा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक निवेश है, एक जरूरी निवेश।
और दिलचस्प बात ये है कि वो घूम फिर कर वापस उसी धुंधले नीले बिंदु पर आ जाते हैं।
बिल्कुल, अंतरिक्ष में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पृथ्वी को भूल जाएं या उसकी परवाह करना छोड़ दें, बल्कि सेगन कहते हैं कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें उसकी कीमत और ज्यादा समझ आती है, उसकी नाजुकी का एहसास होता है। तो ये दोनों चीजें, अंतरिक्ष की खोज और पृथ्वी की रक्षा, साथ साथ चलनी चाहिए।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से जो बड़े सबक या मुख्य संदेश उभरते हैं वो क्या हैं? मेरे लिए तो सबसे पहला और सबसे ताकतवर वही ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण है।
हाँ, निश्चित रूप से, यह हमारे अहंकार को, हमारे गुरूर को तोड़ता है। जब हम खुद को उस विशाल ब्रह्मांड के पैमाने पर रखकर देखते हैं तो हमारे आपसी झगड़े, हमारी खींची हुई सरहदें कितनी छोटी, कितनी बेमानी लगने लगती हैं। ये हमें विनम्रता सिखाता है, सहानुभूति सिखाता है।
और ये बात हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं, जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या हम किसी बहस में उलझ जाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा सबक है वो महान पदावनतियां और बौद्धिक मुक्ति वाली बात। विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड के केंद्र से हटाकर हमारा अपमान नहीं किया, बल्कि हमें अंधविश्वास से, झूठे धम्भ से आजाद किया है।
हाँ, ये विनम्रता ही हमें सच के ज्यादा करीब ले जाती है, और ये सिखाता है कि हमें स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी या पवित्र क्यों न मानी जाती हों।
तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, दोहरी अनिवार्यता। अंतरिक्ष का अन्वेषण करो और पृथ्वी को बचाओ। ये ऐसा नहीं है कि या तो ये करें या वो। सेगन कहते हैं दोनों जरूरी हैं। अंतरिक्ष से मिला नजरिया ही हमें पृथ्वी की कीमत समझाता है, और पृथ्वी ही वो आधार है जहां से हम अंतरिक्ष में जाते हैं।
ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत जैसे देश के लिए ये बात कितनी सही है, जहां हमें विकास और पर्यावरण के बीच हमेशा एक संतुलन खोजना पड़ता है।
बिल्कुल। चौथा संदेश मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। विज्ञान आश्चर्य और आध्यात्मिकता का स्रोत है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि विज्ञान चीजों को समझाकर उनका रहस्य खत्म कर देता है।
बिल्कुल।
सेगन इसका ठीक उल्टा कहते हैं।
वो कहते हैं कि जब आप समझते हैं कि तारे कैसे जलते हैं या ग्रह कैसे बनते हैं, तो ब्रह्मांड और भी ज्यादा जादुई, और भी ज्यादा विस्मयकारी लगने लगता है।
हाँ, ये समझ किसी भी पुरानी कहानी या मिठक से कहीं ज्यादा गहरा आध्यात्मिक अनुभव दे सकती है।
और पांचवा संदेश, वो थोड़ा गंभीर है। हम एक संक्रमणकालीन प्रजाति हैं।
हाँ, सेगन मानते थे कि इंसान कोई विकास का अंतिम पड़ाव नहीं है। हम एक मोड़ पर खड़े हैं, एक चौराहे पर। हमने वो तकनीक विकसित कर ली है जिससे हम खुद को तबाह कर सकते हैं, परमाणु हथियार, पर्यावरण का विनाश।
और साथ ही वो तकनीक भी जिससे हम खुद को बचा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक बहुग्रहीय प्रजाति बनकर।
बिल्कुल। तो चुनाव हमारा है, हमारी पीढ़ी का है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आज के फैसलों का असर कितना गहरा और कितना दूर तक जा सकता है।
इस किताब में कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं, जैसे वो सबसे जानी मानी बात, उस बिंदु को फिर से देखो, वो यहाँ है, वो घर है, वो हम हैं, धूल के एक कण पर जो एक सूर्य किरण में लटका हुआ है।
उफ, क्या लाइन है! एक वाक्य में पूरा ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, हमारी लघुता, हमारी अनमोलता और शांति से मिलकर रहने की जरूरत, सब कुछ इसमें है।
और ये भी कहा गया है कि खगोल विज्ञान एक नम्र और चरित्र निर्माण का अनुभव है। यह एक दूसरे के साथ अधिक दयालुता से व्यवहार करने और उस धुंधले नीले बिंदु को संरक्षित करने और संजोने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, जो एकमात्र घर है जिसे हमने कभी जाना है।
ये विज्ञान का नैतिक पहलू है।
अगर
हमारा घर इतना दुर्लभ है, इतना नाजुक है, तो इसकी और इस पर रहने वाले हर इंसान की हिफाजत करना हमारा फर्ज बन जाता है।
एक और जो मुझे बहुत हिम्मत देती है, गतिहीन जीवन ने हमें बेचैन, अधूरा छोड़ दिया है। खुली सड़क अभी भी धीरे से पुकारती है। यह अपील हमारे अस्तित्व के लिए एक आवश्यक तत्व है।
हाँ, ये हमारी अंदर की खोज की प्यास की बात है, एक्सप्लोरेशन की जरूरत। अंतरिक्ष में जाना सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये हमारे इंसानी फितरत का तकाजा है।
और ये वैज्ञानिक सोच के बारे में, मेरे लिए ब्रह्मांड को वैसा ही समझना कहीं बेहतर है जैसा वो वास्तव में है, बजाय इसके कि भ्रम में बने रहें, चाहे वो कितना भी संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला क्यों न हो।
सच का सामना करने की हिम्मत, भले ही वो सच हमें आराम न दे, अपनी असलियत को ईमानदारी से देखना।
और आखिर में वो पंक्ति जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड से सीधे जोड़ती है, ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम तारों की सामग्री से बने हैं।
वाह, हम इस कॉस्मोस से अलग नहीं हैं, हम इसी से बने हैं, तो बाहर की खोज एक तरह से खुद की ही खोज है।
तो ये सारे गहरे विचार, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं?
व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है कि जब भी हम अपनी रोज की चिंताओं, झगड़ों में बहुत ज्यादा फंस जाएं, तो शायद एक पल रुककर उस धुंधले नीले बिंदु के बारे में सोचें। शायद इससे चीजों को सही नजरिए से देखने में मदद मिले।
हाँ, और शायद प्रकृति की थोड़ी ज्यादा कद्र करें, छोटी छोटी चीजों से पर्यावरण बचाने की कोशिश करें, अपनी रोज की आदतों में बदलाव लाएं।
सामाजिक स्तर पर शायद ये हमें थोड़ा ज्यादा सहनशील बना सकता है, थोड़ा ज्यादा सहयोगी। अगर हम सब एक ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सवार हैं, तो फिर ये नफरतें, ये बंटवारे क्यों? ये हमें जो बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, उन पर मिलकर काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
और सोचने के स्तर पर, इंटेलेक्चुअली,
शायद ये हमें सिर्फ आज या कल के बारे में नहीं, बल्कि लंबी अवधि के बारे में, सभ्यता के पैमाने पर सोचने के लिए प्रेरित करें। आलोचनात्मक सोच अपनाना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन ना करना, सवाल पूछना, ये सब वैज्ञानिक रवैये का हिस्सा है,
जिसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, राजनीतिक या वैश्विक स्तर पर, तो ये विज्ञान में, खोजबीन में निवेश के महत्व को दिखाता है, और साथ ही इस ग्रह की रक्षा, जैसे कि एस्ट्रॉइड के खतरे से बचाव, इन चीजों को प्राथमिकता देने की बात करता है।
इस किताब से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है, वो शायद यही विरोधाभास है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में इतने छोटे हैं, इतने महत्वहीन, और साथ ही इतने अनमोल, इतने खास भी। ये दोनों बातें एक साथ सच हैं।
हाँ, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। और सेगन का जो अंतिम संदेश है कि वो ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है, हर नागरिक के लिए। ये हमें विनम्र बनाता है, जिम्मेदार बनाता है, और शायद थोड़ा बेहतर इंसान भी। ये भविष्य के लिए एक उम्मीद भरी, जरूरी और आशावादी पुकार है, जो कहती है कि देखो, हमारे पास ज्ञान है, क्षमता है, बस सही रास्ता चुनने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।